आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। पीओके भारत का अभिन्न अंग, वहां के सभी हिंदू मुस्लिम भी भारतीय, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और पूरी संसद दृढ़ता से इस बात मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि वहां रहने वाले मुस्लिम और हिंदू दोनों ही भारतीय हैं। जेके मीडिया ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, पीओके में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू भाई भारतीय हैं। जिस जमीन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है वह भारत की है। इसे वापस पाना हर भारतीय और हर कश्मीरी का लक्ष्य है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से पाकिस्तान की साजिशों से दूर रहने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, आज पाकिस्तान भूख और गरीबी की मार से घिरा हुआ है। वहां के लोग भी कश्मीर को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं। अमित शाह ने मंगलवार को यह भी कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा को वापस लेने पर विचार करेगी। उद्धव की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें, राज ठाकरे की MNS का शिंदे की शिवसेना में विलय की अटकलें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा नेतृत्व के बीच हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई। इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। यदि बातचीत सार्थक रही तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने दिल्ली में BJP नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। इसके बाद वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अटकलें लगने लगी। इंडिया टुडे TV ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा कि राज ठाकरे और विनोद तावड़े के बीच हुई मुलाकात से कई संभावनाएं खुल सकती हैं। एक संभावना यह भी है कि राज ठाकरे की पार्टी ता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ विलय हो सकता है। पारंपरिक धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग के फैसले के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया। फेमा यानी विदेशी मुद्रा कानून के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने कई शहरों में कुछ कंपनियों के ठिकानों पर दबिश दी। तलाशी के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी को करोड़ों रुपए की नकदी मिली है। खास बात है कि ED को मिली रकम में एक स्थान पर वॉशिंग मशीन में छिपाकर रखी गई नकदी भी मिली है। एजेंसी ने जानकारी दी है कि 47 बैंक खातों से लेनदेन पर भी रोक लगा दी गई है। ED ने एक बयान में कहा कि कैप्रिकोर्नियान शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों और इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी तथा संबंधित कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली गई। हालांकि ED ने यह नहीं बताया कि दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये तलाशी कब ली गई। संघीय एजेंसी के अनुसार इन संबद्ध कंपनियों में लक्ष्मीटन मैरीटाइम, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टवार्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक स्टील्स लिमिटेड, वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक साझेदार संदीप गर्ग, विनोद केडिया एवं अन्य के परिसरों की तलाशी ली गई। श्रीलंका जाएंगे राजीव गांधी के हत्यारे, तमिलनाडु सरकार ने HC को बताया। तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि यहां स्थित श्रीलंकाई उच्चायोग ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए श्रीहरन उर्फ मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को यात्रा दस्तावेज प्रदान कर दिया है। स्वदेश वापस भेजने का आदेश जारी होने पर वह घर लौट सकते हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक आर मुनियप्पा राज ने न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO द्वारा निर्वासन आदेश जारी होने के बाद श्रीलंका भेज दिया जाएगा। मुरुगन ने याचिका दायर कर त्रिची में अधिकारियों को फोटो पहचान प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। आपको बता दें कि मुरुगन उर्फ श्रीहरन श्रीलंकाई नागरिक है। वह इस हत्याकांड के 7 दोषियों में से एक है, जिन्हें 30 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में रिहा कर दिया था। ऑरेंज कैप की रेस में शामिल हुए शिवम दुबे, पर्पल कैप पर है इनका कब्जा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 के ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर कोई असर चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मैच का नहीं हुआ। जिस बल्लेबाज के पास IPL 2024 के 6th मैच के बाद ऑरेंज कैप थी, उसी के पास अभी भी है। इसके अलावा पर्पल कैप पर जिस गेंदबाज का कब्जा था, उसी ने अब बढ़त बनाकर पर्पल कैप अपने पास रखी है। हालांकि ऑरेंज कैप की रेस में शिवम दुबे की एंट्री टॉप 3 में हो गई है। सबसे पहले बात ऑरेंज कैप की करते हैं, तो लिस्ट में अभी भी टॉप पर विराट कोहली हैं। उन्होंने 2 मैचों में 98 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर सैम करन हैं, जो 2 मैचों में 86 रन बना चुके हैं। शिवम दुबे 2 मैचों में CSK के लिए 85 रन बना चुके हैं। वे अभी तक टॉप 5 से बाहर थे, लेकिन अब टॉप 3 में आ गए हैं। रचिन रविंद्र और साई सुदर्शन की भी टॉप 5 में एंट्री हो गई है। रचिन ने 83 और साई सुदर्शन ने 82 रन IPL 2024 की अपनी 2 से 2 पारियों में बना लिए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान ने पर्पल कैप की रेस में बढ़त हासिल कर ली है। वे एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने 2 मैच खेलकर 6 विकेट निकाले हैं। उनके अलावा कोई अन्य गेंदबाज 2 मैचों में भी 4 विकेट नहीं निकाल सका है। यही कारण है कि जसप्रीत बुमराह पर्पल कैप की रेस में दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 3 विकेट अपने पहले ही मैच में निकाले थे। इतने ही विकेट हरप्रीत बरार, कगिसो रबाड़ा और टी नटराजन ने चटकाए हैं।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT स्मार्टकास्ट की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।